ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 31 अक्टूबर 2021 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ: अयूब। देख, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। उत्तर दे ये ध्यान अब्रानियों: क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्मल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। पाठ उपदेश बाइबल में से मीका। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जबूर: क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नहरों के किनारे लगाया गया है और रतूमी फैलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसे के समान होते हैं जो पाँव से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। राज्य: यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र अहियब इसराइल पर राज्य करने लगा, और उमरी के पुत्र अहियब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने नबात के पुत्र यारूबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सदूनियों के राजा अतिबाल की बेटी अजीबल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया, और उसने बाल का एक भवन सामरिया में बनाकर उसमें बाल की एक विधि बनाई, और अहियब ने एक अशीरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इसराइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। राज्य: और तिशबी एलिया जो जिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहियब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। राज्य: तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि चल शमरोन में रहने वाले इसराइल के राजा अहियब से मिलने को जा, वो तो नबूवत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वो वहां गया है। एलिया को देखकर अहियब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगा लिया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने को तूने अपने आप को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहियब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इसराइल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा, और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारुबाम और अखिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इसराइल से पाप करवाया है। एलिया के ये वचन सुनकर अहियब ने अपने कपड़े फाड़े और अपने देह पर लाठ लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहियब अब मेरे सामने निम्र बन गया है? इस कारण कि वो अब नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। जबूर। जाति जाति के लोग क्यों हुलड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरोध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकम आपस में सहमति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठठों में उड़ाएगा, तब वो उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायो ये उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। रोमियो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वास्तव वास नहीं करती, अच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो इसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागे मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की दया से कौन छुड़ाएगा? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निंदा मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। सैमुएल, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जबूर, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धार्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धार्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरण आगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। जबूर, हे यहोवा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रेम की पूजना पापी को सुधारना है। यदि यहाँ पापी की सजा उसे सुधारने के लिए अपर्याप्त है तो अच्छे आदमी का स्वर्ग पापी के लिए नरक होगा। ईश्वरीय विज्ञान पाप के प्रेम को बुझाने के लिए मृत्यु से पहले या बाद में पर्याप्त पीड़ा की आवश्यकता को प्रकट करता है। सजा से बचना भगवान की सरकार के अनुसार नहीं है, क्योंकि न्याय दया की दासी है। हमारी अदालतें अपराध के मकसद के साथ साथ आयु को साबित करने के लिए सबूतों को पहचानती हैं। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि मानव मन को शरीर को दुष्ट कार्य की ओर ले जाना चाहिए? क्या नश्वर मन हथियार नहीं है? हाथ नश्वर मन के बिना उन्हें निर्देशित करने के लिए हत्या नहीं कर सकते हैं। नश्वर मन कोई बात नहीं, हर मामले में अपराधी है, और मानव कानून अपराध का सही अनुमान लगाता है और अदालतें मकसद के अनुसार उचित रूप से सजा सुनाती हैं। सामग्री में जीवन का विश्वास हर कदम पर पाप करता है। ये ईश्वरीय निराजगी को जन्म देता है और ये यीशु को मार देगा कि वो परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। भावतिक मान्यताएं जब भी और जहां भी दिखाई देती हैं, आध्यात्मिक विचार को मार डालती हैं। यद्यपि त्रुटि एक झूठ के पीछे छुपती है और अपराध बोध का बहाना करती है, लेकिन त्रुटि को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। सत्य उसके अनंत कानून के माध्यम से त्रुटि का खुलासा करता है। सत्य पाप को धोखा देने का कारण बनता है और त्रुटि को जानवर के निशान पर सेट करता है, यहाँ तक कि अपराध को छुड़ाने के लिए या उसे छुपाने के लिए सजा दी जाती है। न्याय से बचना और सच्चाई को नकारना, पाप को खत्म करना, अपराध को खत्म करने, आत्म नियंत्रण को खतरे में डालने और ईश्वरीय दया का मजाक उड़ाने के लिए है। जो कोई भी अपनी विकसित मानसिक शक्तियों का उपयोग भागे हुए अपराधी की तरह ताजा अत्याचार करने के लिए करता है, जैसे अवसर मिलता है, वो कभी सुरक्षित नहीं होता। भगवान उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ईश्वरीय न्याय उसे संभाल लेगा। उसके पाप उसके गर्दन के चारों ओर चक्की के पाठ होंगे, जो उसे अपमान और मृत्यु की गहराई तक तोलेंगे। पापी बुराई करके अपना नरक बनाता है और अच्छाई करने से पवित्र आदमी अपना स्वर्ग बनाता है। नश्वर में उत्पन्न होने वाली बुरी मान्यताएं नरक हैं। इस सपने को कायम रखने वाले झूठे सुकून से बेहतर है वो दुख जो नश्वर मन को उसके शारीरिक सपने से जगाएगा। पाप ही मृत्यु लाता है, क्योंकि पाप ही विनाश का एकमात्र तत्व है। उनके सभी रूपों में बीमारी और बुराई के दावों को बेनकाब और उनकी निंदा करें, उनमें कोई वास्तविकता का एहसास न करें। एक पापी को केवल ये आश्वासन देकर सुधारा नहीं जाता कि वो पापी नहीं है, क्योंकि पाप है ही नहीं। पाप के दावे को काम करने के लिए आपको इसका पता लगाना होगा, मुखटा हटाना होगा, भ्रम को अंगित करना होगा और इस तरह पाप पर विजय प्राप्त करना होगी और इसकी असत्यता को साबित करना होगा। सुधार ये समझने से होता है कि बुराई में कोई खुशी नहीं है, और विज्ञान के अनुसार अच्छे के लिए स्नेह प्राप्त करने से भी, जो अमृत तथ्य को उजागर करता है कि ना तो खुशी और ना ही दर्द, भूख और ना ही जुनून या पदार्थ में मौजूद हो सकता है, जबकि दिव्य मन आनंद और पीड़ा या भय और मानव मन के सभी पापी भूखों की झूठी मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। बदला लेने की खुशी में क्या दयानी दृष्टि दुर्भावना है? बुराई कभी कभी किसी व्यक्ति के अधिकार की सबसे बड़ी अवधारणा होती है। जब तक कि अच्छाई पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती, तब वो दुष्टता में आनंद खो देता है और ये उसकी पीड़ा बन जाती है। पाप के दुख से बचने का तरीका है पाप को रोकना, और कोई रास्ता नहीं है। सजा के डर ने कभी भी इंसान को सही माने में ईमानदार नहीं बनाया। गलत को पूरा करने और सही की घोषणा करने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन हम इस व्यक्ति को कैसे सुधारेंगे जिसके अंदर नैतिक साहस से अधिक जानवरों का साहस है और जिसके पास सच्चाई का सही विचार नहीं है। मानव चेतना के माध्यम से भावतिक की तलाश में अपनी गलती के नश्वर को समझने का अर्थ है खुशी पाना। कारण ढूंढना सबसे सक्रिय मानव संख्या है। इसे भावनाओं को सूचित करने दें और नैतिक दायित्व के प्रति मानव भावना को जागृत करें, और डिग्री के आधार पर वो मानव भावना के सुख और आध्यात्मिकता की भाव्यता और आनंद से कुछ सीखेंगे। जो सामग्री या शरीर को शांत करता है तब वो न केवल मुक्ति पाता है बल्कि मुक्ति पा चुका है। यदि आप जानबूझकर गलत में विश्वास करते हैं और अभ्यास करते हैं तो आप तुरंत अपना पथिया क्रम बदल सकते हैं और सही कर सकते हैं। आधारित पाप या बीमारी के खिलाफ सही प्रयासों के लिए कोई विरोध नहीं कर सकता क्योंकि ये नासमझी है। पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए किसी भी आवश्यकता पर विश्वास नहीं करना। जानना जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि भगवान को कभी भी एक तथाकथित भौतिक कानून के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। पाप और मृत्यु में विश्वास ईश्वर के कानून द्वारा नष्ट हो जाता है, जो मृत्यु की बजाय जीवन का नियम है, कला की बजाय सिद्भाव का, मांस की बजाय आत्मा का। सत्य को ईश्वर के अपने तरीके से त्रुटि को उजागर करने और नष्ट करने दें, और मानव न्याय को ईश्वरीय स्वरूप दें। पाप को उसका पूरा दंड मिलेगा दोनों के लिए कि वो क्या है और जो वो करता है। न्याय पापी को चिन्हित करता है और नश्वर लोगों को सिखाता है कि वो ईश्वर के मार्ग के निशान को ना हटाएं। प्रेम की उत्तम अवधारणाओं के माध्यम से हमें धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है। जो विज्ञान के स्थल हैं, सत्य के अनंत कार्यों को निहारते हुए हम विर्म देते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करें, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब तक के असीम विचार चलता नहीं है और गर्भाधान से अपारिभाषित देवी महिमा तक पहुंचने के लिए पंख लगे हुए हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी करने, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।